पहले दिन हमने देखा था कि सारिपुत्त और मोग्गल्लाएं जो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने श्रमण बनकर इसकी खोज में वे दोनों भी बाहर पड़े थे कि अमरत्व का कारण क्या है, अमरत्व कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें ये शब्द शायद पता नहीं था कि कोई बुद्धत्व होता है या निर्वाण होता है, इसलिए उनके हिसाब से उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया था कि हमें अमर बनना है। और हमने ये भी देखा था कि दोनों ने ऐसा भी तय किया था, ऐसा एक दूसरे से करार किया था कि जिस किसी को इस बात को बताने वाला गुरु मिले तो उसने तुरंत अपने दूसरे मित्र को कहना है। और फिर दोनों दो दिशाओं में अलग अलग चले गए। मोग्गल्लाएं बहुत दूर चले गए होंगे, लेकिन सारिपुत्त को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नालंदा और राजगृह ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर का रास्ता है। वो राजगृह में उनको अश्वजीत मिले और अश्वजीत ने उनको देखकर, यानी सारिपुत्र ने जब अश्वजीत को देखा तो वो धीर गंभीर मुद्रा, बहुत ही सतर्कता से वो चल रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, तो उनको देखते ही सारिपुत्र को लगा कि ये व्यक्ति कोई और है, ऐसा व्यक्ति मैंने पहले देखा नहीं है। और फिर भिक्षाटन समाप्त होने के बाद वो उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे, भिक्षाटन खत्म होने के बाद वो उनके पास गए, अश्वजीत के पास, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध मेरे गुरु है। और फिर दूसरा सवाल किया कि तुम्हारे गुरु की शिक्षा क्या है। तो बड़ी विनम्रता से अश्वजीत ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नया हूं, मुझे ज्यादा बोलने को नहीं आता, यानी मैं उसका स्पष्टीकरण उतनी ठीक तरह से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका सार जो बुद्ध ने बताया है वो मैं बताऊंगा। बुद्ध ने उन वस्तुओं का मूल बताया है जो कारण से उत्पन्न होती है, उसके निरोध का भी उन्होंने मार्ग बतलाया है। यह उस महाश्रमण का सिद्धांत है। खाली दो पंक्तियां है और इस दो पंक्तियों में पूरा प्रतीत्य समुत्पाद उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इस बात को सुनकर, इस गाथा को सुनकर सारिपुत्र हमने देखा कि वो श्रोतापन्न बन गए, और श्रोतापन्न बनने के बाद तुरंत ही वे महामोग्गल्लाएं की खोज में निकले। महामोग्गल्लाएं को उन्होंने ढूंढा, उनको बताया कि अपने को एक गुरु मिल गए हैं, और दोनों मिलके फिर बुद्ध के पास गए और बुद्ध की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, बुद्ध के शिष्य वो बन गए, और ये अग्रगण्य शिष्य हम देखते हैं, सेनानी जिनको कहते हैं। तो ये जो शिक्षा है बुद्ध की, उन्होंने कहां प्राप्त की? ये प्रतीत्य समुत्पाद उनका ये अनुभव कब उनको प्राप्त हुआ ये भी हमने देखा। हमने उस डायग्राम के माध्यम से, आकृति के माध्यम से हमने ये भी देखने की कोशिश की कि तनाव जो होता है, तनाव मतलब दुख है, और दुख के कारण अलग अलग होते हैं। तो कोई एक कारण नहीं होता, ये भी हमने देखा है। और उसके पश्चात हमने प्रतित्य समुत्पाद की व्याख्या भी की है। प्रतित्य समुत्पाद की व्याख्या करते समय हमने ये देखा है कि प्रतित्य यानी उत्पन्न होकर बढ़ना, बढ़कर नष्ट होना, ये प्रतित्य है। और नष्ट होने से फिर दूसरे चित्त का उसी समय उत्पन्न होना, उसको समुत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से एक नष्ट होता है तो दूसरा तुरंत वहां तैयार हो जाता है, इस एक का कारण दूसरा बन जाता है। तो ये भी हमने कल देखने की कोशिश की। कल हमने ये भी देखा कि एक उदाहरण लिया था हमने कि आकाश में बादल आ जाते हैं, बादलों से फिर बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, और वर्षा से रास्ते में फिसलन पैदा हो जाती है, फिसलन पैदा होने से आदमी गिर जाता है, और गिर जाने से उसे चोट लगती है। तो ये सब बातें एक के ऊपर एक आधारित है, एक के ऊपर एक निर्भर है। यदि बारिश नहीं होती या बादल नहीं आते तो बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो रास्ता गीला नहीं होता, रास्ता गीला नहीं होता तो फिसलन नहीं पैदा होती, फिसलन नहीं पैदा होती तो आदमी गिरता नहीं, और गिरता नहीं है तो चोट नहीं लगती। तो एक कारण है दूसरे कारण को जन्म देता है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि यदि आकाश में बादल ही नहीं है तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं है तो रास्ते में फिसलन नहीं होगी, और फिसलन नहीं होगी तो आदमी गिर नहीं जाएगा, और वो गिर नहीं जाएगा तो चोट नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने ये प्रतित्य समुत्पाद इन उदाहरणों के माध्यम से कल देखने का प्रयास किया। हमने दूसरा भी एक उदाहरण लिया था कि आजकल जो गर्मी हो रही है उसका कारण क्या है, तो पेड़ों का काटना, ये बहुत सारी बातें हमने उसमें देखी, और गर्मी का कारण वो है। यदि पेड़ ज़्यादा हो गए तो बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी तो ज़मीन में नमी आएगी, फिर धूप कम हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये भी हमने कल देखने की कोशिश की। हमने एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी कल देखा था कि भिक्षु जगदीश काश्यप जो बंते जी के गुरु हैं, उनका एक उदाहरण देखा था कि वे वेद में माहिर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जो पैसेज पढ़ा ग्रंथों में कि भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनके पीठ में दर्द हो रहा है, और दर्द जब हो रहा था तो उन्होंने ज़्यादा अननेसेसरीली उसको सहने के बजाय सारिपुत्र बाजू में बैठे हुए थे, उनको कहा कि सारिपुत्र ये शिक्षा को आगे बढ़ाओ, मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ। तो ये जो अनुभव जगदीश काश्यप जी ने पढ़ा तब उनको लगा कि सही भी एक मानव है, और मानव के पीठ में दर्द होना संभव है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उनको फिर वो वेदों का पूरा याद आया कि वेद में ऐसा कोई भगवान का ऐसा कोई देव उनको दिखाई नहीं दिया कि उसके पीठ में कभी दर्द हुआ है। तो ये कंपैरिजन उन्होंने किया और फिर वो बुद्धिस्ट बन गए। आपको ये भी पता होगा कि ये राहुल सांकृत्यायन जी, आनंद कौशल्यायन जी और जगदीश काश्यप जी, ये तीनों बड़े गहरे दोस्त थे, और उन्होंने तीनों ने भी ये ऐसा तय किया था कि हम बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, और पाली में जो जो कुछ साहित्य है उसको हम हिंदी में ले आएंगे। तो ये तीनों का बहुत बड़ा बौद्ध साहित्य के लिए योगदान है कि उन्होंने हिंदी में बहुत सारा जो ग्रंथों का, पाली का जो ट्रांसलेशन है वो उन्होंने किया, उन पर भाष्य भी किया है। तो उसमें से एक जगदीश काश्यप जी है, तो वो ये भी हमने देखा। और आज हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अभी जो बारह निदान जिसको कहते हैं, बारह कड़ियां जिसको कहते हैं हम, तो उसकी ओर हम आज बढ़ने वाले हैं। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया बताई गई है वह प्रत्यित्य समुत्पाद के आधार पर बताई गई है। उन्होंने इन 12 निदानों का पृथक्करण किया है, एनालिसिस किया है, और उसके माध्यम से कौन सा निदान किस पर निर्भर है और कौन सा निदान किसका कारण है ये बताने की कोशिश की है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग निदानों का वर्णन किया है। कुछ ग्रंथों में 5 निदान बताए गए हैं, कुछ ग्रंथों में 10 निदान बताए हैं, लेकिन आम तौर पर पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो 12 निदान ये बताए जाते हैं। भवचक्र फोटो है, भवचक्र मैं आप पूछने के लिए भूल गया, मैं है क्या नहीं, एक होता ना मोटा जरा कोणाल तरी तो परे तो ये 12 निदान जो है इसमें प्रतित्य समुत्पाद की चेतना हमें दिखाई देती है, स्पिरिट हमें दिखाई देता है। तो इस चेतना को समझने के लिए ये अलग अलग निदानों का हम उपयोग कर सकते हैं। इन 12 निदानों में पहला और दूसरा निदान जो है वह गत जीवन के संदर्भ में है। 11वां और 12वां निदान जो है वो आने वाले जीवन के संबंध में है, और बीच के जो निदान है वो वर्तमान जीवन के संबंध में है। इस तरह से इस 12 निदानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 2 गत जन्म के या पूर्व अनुभव के हैं, बीच वाले जो है वो वर्तमान के अनुभव के हैं, और आखिरी 2 ये यानी जाति और जरा मरण ये भविष्य के लिए बताए गए हैं। इस तरह से 3 भागों में इसको बांटा गया है, भूत, वर्तमान और भविष्य। इस तरह से इन पूरे निदानों में से हमें यही देखना है कि दुख क्या है। ये मूलभूत बात हमें हर बार जब कभी भी कोई भी निदान का हम वर्णन करेंगे या उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वहां दुख क्या है और दुख से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं ये बार बार हमें देखना होगा। भगवान बुद्ध ने उदान में स्वयं कुछ, उदान यानी उत्स्फूर्त जो वचन है वो बाहर निकलते हैं मुंह से, उसको उदान कहा गया है। तो उस उदान में भगवान बुद्ध ने इस 12 निदानों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से स्वयं उन्होंने ये कहा है। ये मिटा दूं,
सुधा में ये बातें आई है।
तो आगे चलो। तो ये यहां बुद्ध यही बताते हैं कि किस पर क्या आधारित है, किसका कारण क्या है। संस्कार का कारण है अविद्या, विज्ञान का कारण है संस्कार, नाम रूप का कारण है विज्ञान। इस तरह से एक के ऊपर एक निर्भर है। तो जब जाति तक हम आते हैं, जन्म तक जब हम आते हैं, तो जन्म से फिर खाली जरा मरण ही नहीं, तो वहां दुख भी है। ये इंपॉर्टेंट है। खाली आदमी मर गया ये बात नहीं है, वहां तो जरा मरण है, विलाप है, खेद है, पीड़ा है, विवशता है और खिन्नता है। ये सब बातें वहां उत्पन्न होती है। तो जो हम दुख की बात कर रहे हैं कि ये प्रतीत समुत्पाद दुख को बताता है कि ये ऐसा सिलसिला जारी रहता है, तो हम दुख से भरे हुए होते हैं। इस तरह नीचे लिखा है कि दुख का यह गोला उत्पन्न होता है। लेकिन अभी दूसरी तरह से भगवान बुद्ध ने फिर आगे बताया है। ये मिटा दो। अविद्या के ओझल होने से, उसका समूल निरोध होने से संस्कार का निरोध होता है। फिर अभी वही बातें आगे आती है कि संस्कार के ओझल होने से, उसका समूल निरोध होने से आगे क्या हो जाता है, विज्ञान का निरोध होता है। तो आगे मैं अभी संस्कार से विज्ञान का विज्ञान से यानी वो विज्ञान खत्म होने से नाम रूप। तो इस तरह अभी आप उसको पूरा कर सकते हैं। फिर जाति और जरा धर्म तक हम आएंगे। आखिर में जाति का निरोध होने से तो बाकी के आप बाद में लिख सकते हैं उसको। तो जाति का निरोध होने से पहले हमने क्या देखा था? पहले इसमें हमने देखा था कि जाति के कारण जरा मरण विलाप वगैरह वगैरह ये क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है और दुख का एक गोला उत्पन्न होता है। लेकिन यहां जाति का निरोध होने से जरा और मरण विवशता पीड़ा खिन्नता वगैरह वगैरह उसका निरोध हो जाता है। यानी जन्म ही नहीं तो फिर बाकी की बातें आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह दुख के पूरे गोले का निरोध होता है। तो यहां जन्म ये जब होता है तब दुख भी पैदा होता है और जब जन्म नहीं होता, जन्म से अगर आदमी छुटकारा पाता है तो फिर पूरे दुख का भी वो निरोध करता है। हम यहां ये देखते हैं कि जो बुद्ध है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, जो अरहंत है उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म क्यों होता है? फिर हम लोगों का पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारी तृष्णा अभी तृप्त नहीं हुई, हमारी तृष्णा अभी नष्ट नहीं हुई। जब तक ये तृष्णा का जाल हमारे बीच में रहेगा, तृष्णा में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक हम इस भवचक्र में बार 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 जन्म लेते रहेंगे। और इस भवचक्र से बुद्ध ने छुटकारा पा लिया है, क्योंकि उन्होंने तृष्णा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये हमारे अंदर और बुद्ध के अंदर ये फर्क है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन बुद्ध जन्म नहीं लेते ऐसा कहते हैं, क्योंकि दुख के पूरे गोले का उन्होंने वहां निरोध कर दिया है, क्योंकि वहां अभी उनका जन्म होने का प्रश्न ही नहीं आता। ये भवचक्र जरा फेंट हो गया, दिखता है क्या? ये लोगों को तो नहीं दिखेगा, कहां रखेंगे उसको? वो कोने में, अच्छा वो कोने दिखता है क्या? सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो अविद्या है, इसलिए वो अविद्या से हम उसकी शुरुआत करते हैं। वैसे देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहां हुई है और कहां खत्म होने वाला है ये हम नहीं बता सकते। बुद्ध ने भी ये ठीक तरह से नहीं बताया है कि इसकी शुरुआत यहां से हुई है और वो ये यहां खत्म होने वाला है। जैसे हम कल देख रहे थे कि इसका पहला कारण क्या है, ऐसा जब उनको सवाल किया गया तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, पहला कारण भी नहीं बताया और उसका अंत कब होने वाला है ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो ये भवचक्र यानी ये चार, ये जो राक्षस दिख रहा है हमें, तो यम है, ये अनित्यता है, तो ये अनित्यता का राक्षस इसने ये आईना पकड़ा है, दर्पण पकड़ा है अपने हाथों में और पैरों के उसमें जकड़ लिया है। ये चार प्रकार के दर्पण है, दर्पण पता है, शीशा आईना। तो हम जब इसको देखते हैं, इस भवचक्र को पहले देखते हैं, तो ये मैं ही हूं ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये हूं मैं ही हूं तो ये यहां हमें दिखाई देता है। ये तीन प्रकार के हमारे जो पॉइजन्स है ना, लोभ द्वेष मोह, ये पहले सर्कल में बताया, दूसरे सर्कल में ऊर्ध्वगामी और अधोगामी मार्ग बताया है। अधोगामी में आदमी नीचे नीचे जाकर ये नरक लोक है उधर तक जा रहे हैं,
और यहाँ ऊर्ध्वगामी है वो अच्छी तरह से स्वर्ग लोक तक या अब देवलोक तक जा रहे हैं, इस तरह से बताया है। तीसरे इसमें अपने छह मन की अवस्थाएं जो है वो बताने की कोशिश की है, और ये छह मन की अवस्थाएं खास करके मोगलायन इन्होंने ये बताई है, और बुद्ध के साथ उन्होंने जब डिस्कस किया तो बुद्ध ने कहा कि इसका एक पिक्चर निकालो, और ये पिक्चर तब से ये निकाला गया है, और तिब्बती लोग इसको बहुत ज्यादा मानते हैं, तो हरेक विहार में हम ये बहुत बड़े पोस्टर्स, बहुत बड़े पेंटिंग्स हम ये भवचक्र के हरेक तिब्बती विहार में हम देखते हैं। तो यहां ये चौथी कड़ी जो है, ये चौथा सर्कल जो है उसमें 12 कड़ियां हैं, 12 निदान हैं। तो पहला है ये अविद्या, तो अविद्या में एक ये व्यक्ति यहां दिखा गया है, दिखता है क्या? दिखता नहीं होगा, दूरबीन लगा। तो ये अंधा व्यक्ति है, और ये जो सामने वाला आदमी जो है वो इसके हाथ में लट है, स्टिक है, और ये उसके हाथ में दोनों पकड़ के ये अंधा आदमी उसके पीछे पीछे जा रहा है। कभी कभी इसको ऐसा भी बताया गया है कि दो, एक अंधा व्यक्ति है और दूसरा आंख वाला व्यक्ति है, तो आंख वाला व्यक्ति अंधे व्यक्ति को लेके जा रहा है और राजस्थान में गया है और राजस्थान में पूरी रेत ही रेत है, दिन में बहुत धूप होती है, गर्म हो जाती है, तो ये दोनों भी सो जाते हैं, तो उसका जो स्टिक है वो उसने अपने बाजू में रखा है और दोनों सो गए रात में। लेकिन रात में इतनी ठंड हो जाती है कि वो वहां उसके बाजू में आके एक सांप सोया हुआ है, अंधे के बाजू में सांप सोया हुआ है, लेकिन उसने उसको लगा कि ये मेरी लकड़ी है ना? तो वो आंखों वाला आदमी बोलता है कि अरे ये सांप है, मत पकड़, क्या मुझे क्या बुद्धू बना रहे मैंने ही रखी है ये लकड़ी और मैं उसको उठाऊंगा, अरे मत पकड़, अरे मत पकड़, वो सांप है। वो सुनता नहीं, तो अंधे लोग बहुत होशियार होते हैं, वो दूसरा का सुनते भी नहीं, एक तो खुद को दिखाई नहीं देता और दूसरे जब लेके जा रहे हैं उनको रास्ता बता रहे वो सुनते नहीं है। तो यहां अपनी बात ऐसी है, हम ऐसे अंधे लोगों के जैसे, अरे वहां सांप है बोले तो वहां बोलेंगे नहीं नहीं मेरी लकड़ी लकड़ी यही है, मैं पकड़ूंगा जरूर। तो यहां ये अविद्या का चित्र यहां बताया गया है, तस्वीर बताई गई है कि यहां ये अविद्या इसलिए बताई गई कि ऐसे यहां हमारे जगत में लोग ऐसे हैं कि जो धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है उनको, इस तरह से वे अविद्या से भरे हुए हैं, इधर उधर खोजने की टटोलने की कोशिश करते हैं वो, और ये लोग जो है मिथ्या दृष्टि से पूरी तरह से भरे हुए हैं, और इनका मन जो है ये कैसा है, प्रतिक्रियात्मक मन है, रिएक्टिव माइंड से ये लोग भरे हुए होते हैं। दूसरा चित्र हम और विस्तार में ये सब कड़ियां देखने वाले हैं बाद में, लेकिन मैं पिक्चर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। दूसरी कड़ी जो है ये है, यहां कुम्हार बताया है, यहां दूसरा ही कोई बता, हाँ कुमारी है। तो ये घड़ा बना रहा है, चक्का है, ये घड़ा बना रहा है, तो ये है संस्कार का प्रतीक बताया गया है, संस्कार की तस्वीर इस तरह से बताई गई है। तो संस्कार यहां ये बताते हैं कि हमारी आदतें हैं, हम आदतों से मजबूर हो जाते हैं हमेशा, और हमारी जो गतिविधियां हैं ये किस पर निर्भर है, अविद्या के ऊपर निर्भर है।
हम अविद्या भरने के कारण हमारी अभी की जो गतिविधियां होती है वो भी वैसे ही होती है, जो अविद्या में हम जो कुछ करते हैं वही हम यहां संस्कार में भी करते हैं। जिंदगी में हम निर्णय जो लेना चाहिए वो निर्णय ठीक तरह से नहीं लेते, ये दूसरी कड़ी है। तीसरी कड़ी में एक बंदर बताया है, ये विज्ञान विज्ञान की कड़ी है। तीसरी कड़ी में एक फूल फूल से भरा हुआ पेड़ यहां दिखता है, अभी ये बहुत धुंधलासा हो गया, ये पेड़ है और ये बंदर जो है वो फूल तोड़ रहा है या इधर उधर झूम रहा है, एक डाली से दूसरे डाली पर वो झूम रहा है। तो यहां ये बताने की कोशिश की गई है कि हम नए नए बातों की खोज करते हैं, इधर से उधर जो झूमना है वो नए नए बातों की खोज करना ये बताया गया है, यानी सुख की खोज में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि सुख कहां मिलेगा। और मेरा जो अहंकार है वो संतुष्ट कब हो जाएगा, अहंकार से मैं कब मुक्त हो जाऊंगा। तो इस तरह से भी यहां ये बंदर के माध्यम से और फूल का पेड़ है उसके माध्यम से ये विज्ञान बताने की कोशिश की है। चौथी तस्वीर है, ये है यहां ये नाव है और नाव चलाने वाला एक आदमी बताया। तो ये नाम ये नाम रूप का प्रतीक है, ये नाव और जो रोइंग कर रहा है आदमी वो तो नाम रूप का प्रतीक है। नाव चलाने वाले को मन कहा है, नाव चलाने वाला ये मन का प्रतीक है और बोट जो है ये रूप का प्रतीक है। बोट जो बोट चला रहा है नाव चला रहा है वो रूप का प्रतीक है और ये दोनों इकट्ठा आकर नाम रूप बन जाता है, दोनों इकट्ठा आकर। और इसी को हम शरीर और मन ऐसा भी कहते हैं, नाव मतलब शरीर है और ये आदमी जो रोइंग कर रहा है वो मन है। बाद में पांचवीं कड़ी है, इसमें एक घर बताया है, ये घर में पांच खिड़कियां हैं और एक दरवाजा है ऐसा बताया, चढ़ाएपन है। तो ये घर जो है ये मानो एक मानव है और ये मानव के फिर पांच खिड़कियां जो है वो पांच इंद्रिय है और दरवाजा है वो छठा इंद्रिय है, उसको मन कहा है। तो इस तरह से छह इंद्रियों से भरा हुआ ये घर है या मानव मानव है। उसके बाद में ये छठी तस्वीर जो है यहां स्त्री और पुरुष का आलिंगन बताया है, स्त्री और पुरुष का ये जो युगल है उनका आलिंगन बताया है और एक दूसरे का वो चुंबन ले रहे हैं। तो यहां ये स्पर्श बताया है, ये स्पर्श का स्पर्श बताने के लिए ये तस्वीर बताई गई है। ये स्पर्श कैसे पैदा होता है, स्पर्श कैसे निर्माण होता है, तो अपने छह इंद्रिय है, ये जो छह इंद्रिय है और व्यक्ति है या यानी वस्तु है और मन उसके बीच में काम करता है, ये तीन चीजें जब इकट्ठा आ जाती है तो स्पर्श बनता है। अपना एक इंद्रिय वो इंद्रियों के माध्यम से जो हम वस्तु देखते हैं वो वस्तु और मन, ये तीन बातें जब इकट्ठा आती है तब स्पर्श होता है। तो ये स्पर्श की तस्वीर यहां बताई है। बाद में आगे सात्विक कड़ी जो है ये है वेदना, इसमें इसके आंख में बाण लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है, एक आदमी है और उसके आंखों में तीर लगा हुआ है।
तो ये वेदना की तस्वीर बताई है, ये कड़ी है वेदना वाली, सातवीं कड़ी। उसमें फिर वेदना में हम देखते हैं कि तीन प्रकार की वेदना है, एक है सुखद, दूसरी दुखद और तीसरी है न सुख न दुख, या जिसको न्यूट्रल कहते हैं, तटस्थ कहते हैं। उसके बाद में आठवीं कड़ी है, यह है यहां एक स्त्री है, यह पुरुष को मदिरा पिला रही है, मदिरा का प्याला वो पुरुष को दे रही है। तो यहां यह तृष्णा का प्रतीक यहां बताया। यहां आदमी जो मदिरा पीने की कोशिश कर रहा है, स्त्री मदिरा दे रही है, यानी वो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, सुख की खोज में वो उन्हें लगता है कि अगर मदिरा ज्यादा पी ली तो हमें सुख मिलेगा, तो इसलिए ये तृष्णा का प्रतीक बताया गया। और तृष्णा यह प्रतिक्रियात्मक मन को बढ़ावा देती है, ये जो तृष्णा है प्रतिक्रियात्मक मन को बढ़ावा देती है। बाद में नवी कड़ी है, यह है एक स्त्री है और यह फल तोड़ रही है, पेड़ से फलों को इकट्ठा कर रही है, ये इसका बास्केट यहां दिखाया है और यह फल तोड़ रही है, जमा कर रही है। तो यहां ये बताने की कोशिश की है कि हमारे इंद्रियों का अनुभव है, उसके बाद में अपने अलग अलग दृष्टिकोण है, उसके अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग आदतें हैं, इनको हम इकट्ठा करते हैं, इनको हम जमा करते हैं, इसको उपादान कहा है। बाद में दसवीं कड़ी है, इस इस कड़ी में यहां जरा अलग बताया है चित्र में, ये स्त्री और पुरुष का मिलन हो रहा है और स्त्री अभी गर्भावस्था में है, उसको भव कहा है। ये जो दसवीं कड़ी है यह भव कहलाती है, यानी स्त्री पुरुष के मिलन से फिर गर्भावस्था में वो स्त्री है। भव के बाद ग्यारहवीं कड़ी है, यहां जन्म है, गर्भावस्था के बाद ये स्त्री जो है ये बच्चे को जन्म दे रही है, इस तरह से ये बताया है, ये ग्यारहवीं कड़ी है। और बारहवीं कड़ी में ये बताया है कि एक आदमी मरे हुए आदमी को अपने पीठ पर लेकर शमशान घाट में जा रहा है अभी, और यहां ये जलाया हुआ दिखाया है कि वो बाद में वो जलाया जाता है। अभी पीठ पर जो लेके जाने का, जो मृत शरीर पीठ पर लेके जाने का, ये तिब्बत में ही है, आपने इधर पीठ पर कोई लेके नहीं जाते, अपने यहां चारपाई जो भी होती है, नहीं तो क्या कहते हैं अभी ट्रॉली हो गई, लेकिन उसको भी शरण बोलते हैं, वो शरण पे रखते हैं, तो उस पर रख के फिर चार लोग जो है वो शमशान घाट में उसको लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ इतना बर्फ होता है कि ये तिब्बती लोग वो ज्यादा जला देते हैं, उसको जाके छोड़ देते हैं, बाद में जो हिंस्र प्राणी है ये है वो उस बॉडी को खाते हैं, इनका तरीका जरा अलग ही है। वो ऐसा भी कहते हैं कि जब वो मर जाता है तो उसको जूते से मारते हैं वो, और एक पट्टे से बांध देते हैं, और बाद में उसको जाके ऐसे खुला छोड़ देते हैं, वो फिर जो कोई प्राणी है वो खाएंगे और खत्म हो जाएगा। जलाने की भी बात ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां बर्फ ही इतना है तो वो क्या जलाएंगे, वो आग ही नहीं पैदा होगी वहां, तो इसलिए वो ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये 12 कड़ियां हैं, इसको 12 निदान भी कहते हैं।
थोड़ा सा मैं आगे जाऊं, और ये भवचक्र में जो 12 कड़ियां बताई है, 12 निदान बताए हैं, उसका मूल स्रोत ये अभिधम्म में है, ऐसा कहते हैं। अभिधम्म में ये बातें बताई गई हैं। अभी ये जो प्रतीत्य समुत्पाद की शुरुआत हमने देखी है, कहां से शुरू हुई है? वो अविद्या से। तो अविद्या जब तक है, जब तक अविद्या है तब तक मैं और मेरा, आई एंड मी, ये दो बातें अपने को जगत से अलग कर देती है। जगत का, जगत अलग है और मैं और मेरा, ये दो बातें हम अलग करते हैं। और मैं और मेरा, इस दो बातों को अलग करके मैं दुनिया का अलग तरह से अनुभव लेता रहता हूं। मैं अलग हूं और दुनिया अलग है, इस तरह से हम एक दूसरे को अलग अलग करके दुनिया का हम अनुभव करते हैं। फिर मैं जब दुनिया में रहता है तो फिर वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरह से उसमें द्वेष भी पैदा होता है, तृष्णा भी पैदा होती है उसमें। और यहां फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरह से जब वो बातें करने लगता है और लोगों का द्वेष भी करने लगता है, क्योंकि वो लोगों से अलग समझता है अपने आप को, दुनिया से अलग समझता है, और फिर द्वेष भी उसमें बढ़ता है, लोभ भी उसमें बढ़ता है, और वहां इसका प्रतिक्रियात्मक मन शुरू हो जाता है। अविद्या जब शुरू हो जाती है तब उसका प्रतिक्रियात्मक मन वहां शुरू हो जाता है, और अपने आप को एक अलग सा व्यक्ति कहकर वो अपने आप को समझने लगता है। मैं अलग हूं, मेरा दूसरों से कोई वास्ता नहीं है, मैं अलग हूं, वो अलग है, इस तरह से वो प्रतिक्रियात्मक मन से कार्य करने लगता है। और वह जो व्यक्ति, यानी अलग सा व्यक्ति है, उसमें अभी मैं की बाधा ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगती है, ईगो उसका ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगता है। ये मैं जब बढ़ता है तो इस मैं से फिर उसका जन्म होता है, यानी जन्म जब होता है तब किसने जन्म लिया? तो मैंने जन्म लिया, इस तरह से वो कहता है। वास्तव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, ऐसा होते हुए भी वो क्या कहता है कि ये मेरा जन्म हुआ है, यानी वो मैं और मेरा, इससे वो हमेशा चिपक के रहता है। और फिर बाद में फिर मैं अगर जन्म लेता हूं तो मैं ही मरूंगा, मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, इस तरह से फिर उसकी धारणा मन की बनती है। यानी यहां से ही उस ईगो को और मैं और मेरा मेरा, ये जो बातें हैं ये अविद्या से ही शुरू होती है। लेकिन जब अविद्या का निरोध होता है, अविद्या जब नष्ट हो जाती है, तब इन परिस्थितियों में ये मैं और मेरा ये भी नष्ट हो जाता है। ये पक्की धारणा उसकी जो बनी हुई थी, मैं और मेरा, ये पक्की धारणा भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। और जब उसका अंत हो जाता है तो वहां सृजक मन का निर्माण होता है। मैं और मेरा, इसका जब अंत होता है तब सृजक मन वहां पैदा होता है। तो दोनों भी बातें हम यहां देख रहे हैं, एक तो प्रतिक्रियात्मक मन है, वहां जब अविद्या है तो प्रतिक्रियात्मक मन है, और जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो सृजक मन की निर्मिति हो जाती है, उसका निर्माण हो जाता है। और सृजक मन हमेशा ही खुला रहता है, इट इज ओपन टू एक्सेप्ट व्हाट एवर द थिंग्स आर देयर। और जब सृजक मन की अवस्था निर्माण होती है, अपना मन खुला होता है, तो इस अवस्था को बुद्धिज्म में असंस्कृत अवस्था कहा है, असंस्कारित अवस्था कहा है, या अनकंडीशन अवस्था कहा है। यानी यह जब नष्ट होता है तो हम दूसरी तरह से यह भी कह सकते हैं कि यह निर्वाण की अवस्था है। जब अविद्या नष्ट हो जाएगी तो प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी, और प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमें निर्वाण प्राप्त हुआ है, हमें बोधि प्राप्त हुई है, हमें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। जब बुद्धत्व प्राप्त होता है तो फिर जन्म का भी प्रश्न नहीं आता और जरा मरण का भी प्रश्न नहीं आता, दोनों भी बातों से वो परे हो जाता है, जन्म से भी और बूढ़ापन और मरण या मृत्यु, इससे भी वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और इसी को अमरत्व कहते हैं, जिसका जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है, ये जो अवस्था है इस अवस्था को अमरत्व कहा है। और इसी अमरत्व को खोजने के लिए सारिपुत्त और मोग्गलायन निकले थे, और ये अमरत्व उनको प्राप्त हुआ कब, जब वो अश्वजीत से मिले थे, अश्वजीत से मिले थे, और उन्होंने वो जो गाथा सुनी, प्रतित्य समुत्पाद की गाथा सुनी, तो तभी हमने देखा कि सारिपुत्र को वो गाथा सुनते सुनते ही श्रोतापन्न की अवस्था प्राप्त हो गई। और ये हम आगे ये भी देखते हैं कि दोनों भी अर्हत पद तक चले गए हैं। तो ये जो अवस्था है, अनकंडीशन स्टेट जिसको कहते हैं, अवस्था कहते हैं, तो ये मानव के संपूर्ण समाधान की अवस्था है, संपूर्ण समाधान की, संपूर्ण सुख और शांति की ये अवस्था है। और इस अवस्था को अगर हम प्राप्त करते हैं तो ये हमें कहां तक लेके जाती है, ये अवस्था निर्वाण तक लेके जा सकती है। जब तक मैं और मेरा अहंकार ये जब तक रहेगा तब तक हमारा अस्तित्व जो है संस्कारित रहेगा, जिसको हम संस्कृत कहते हैं या कंडीशन कहते हैं। लेकिन मैं और मेरा या मेरा अहंकार ये जब खत्म हो जाता है तो फिर हमारे अंदर बदलाव आने लगता है, और हमारा अहंकार हम वहां ध्वस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यहां अविद्या और तृष्णा ये दो बातें, ये जो दोनों है ये घर बनाने वाले गौंडी है, अविद्या और तृष्णा ये दो एक घर बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से एक गौंडी है, और जब वे प्रतिक्रियात्मक ढंग से कार्य करना बंद कर देते हैं तो दुख का यह ढांचा पूरी तरह से टूट पड़ता है। और जब असमाधान का ये जो घर है ये पूरी तरह से गिर जाता है, तो तृष्णा और अविद्या ये जब नष्ट हो जाती है तो उससे बनाया हुआ ये जो घर है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, और यही मुक्ति का मार्ग कहलाया जाता है। और यही प्रतिक्रियात्मक मन से बाहर निकलने का मार्ग बतलाया गया है। तो दो प्रश्न हम लेंगे चर्चा के लिए, चिंतन के लिए। कि हमने एक तो अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं ऐसा देखा, और दूसरे देखा कि अविद्या नष्ट होने से संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से, यानी ये है तो वो है और ये नहीं है तो वो नहीं है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पूरा चिंतन कीजिए कि इसमें मैं कहां आ रहा है, क्यों अविद्या क्यों खत्म नहीं हो रही है, उसमें मेरा अहंकार, मेरा मैं, ये कहां आ रहा है, और मैं उसे ये जो खत्म करना है मुझे, उसका निरोध करना है, वो क्यों नहीं हो रहा है। हमने ये भी देखा है कि जब तक अविद्या और तृष्णा है तब तक मैं और मेरा ये बात हमेशा के लिए रहेगी। तो हमें ऐसे कौन से उपाय करने हैं, ऐसे कौन से उपाय करने हैं कि जिससे ये मैं और मेरा वहां खत्म हो जाएगा, हमें क्या उपाय अपनाने होंगे। दो बातें मैंने बताई है चिंतन के लिए, ये क्लियर है क्या? एक बार दोहरा हूं, अभी तो मैं तो भूल गया। एक है कि मैं और मेरा ये जब तक है इसका मतलब अविद्या और तृष्णा है, तो ये मैं और मेरा कब निकल जाएगा? मैं और मेरा ये जो बातें हैं ये मेरे अंदर से कब निकल जाएगी और मैं अविद्या और तृष्णा से मुक्त हो जाऊंगा। और दूसरी बात जो है वो जो उदान की जो कड़ियां हमने देखी है, उसको अनुलोम और प्रतिलोम ऐसा भी कहते हैं, तो उन बातों को यानी 12 कड़ियों को, 12 निदानों को आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि मुझे ये दूसरे निरोध की अवस्था में मैं कैसे जा सकता हूँ। अभी उत्पन्न की अवस्था में तो हूँ मैं, इससे ये उत्पन्न हो रहा है, उससे उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इसका निरोध मैं कैसे करूँ ताकि उसका निरोध हो, तो ये मैं कैसे कर सकूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।